ஓம் சாந்தி. ஹம் ஆப் சபி இஸ் ஜான் மார்க் கே பஹலே ஆசுரி சம்பிரதாய மே தே. ஆசுரி சம்பிரதாய சே ब्राह्मण बनने के लिए मुख्य पिलर के रूप में चार बातें थी, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुण। उन चारों को धारण करके जिस आत्मा ने जितना धारणा की उस अनुसार से वो उतना परफेक्ट ब्राह्मण बना, और ब्राह्मण बनने के बाद अब बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बाबा ने चार सब्जेक्ट्स दिया। वो चार सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जो आत्मा इन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेती है वही फुल नंबर पाती है, अर्थात विश्व महाराजन के राजघराने में आती है। तो उन चारों सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। वैसे चारों सब्जेक्ट्स में मुख्य माना गया है योग, और वर्तमान माहौल के आधार से चारों तरफ योग का प्रोग्राम चल रहा है, सब बच्चे कर रहे हैं। लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना है। पहला शब्द है ज्ञान। आप किसी से मिलते हो अनजान बी के से, तो आप क्या पूछते हो, आप कितना समय से ज्ञान में चल रहे हो, या ये पूछते हो कितना समय से योग में चल रहे हो, कितना समय से धारणा में चल रहे हो, कितना समय से सेवा कर रहे हो। नहीं, पूछते हैं कितना समय से ज्ञान में चल रहे हो। अगर गहराई से सोचो तो इन चारों सब्जेक्ट्स में मुख्य है ज्ञान का सब्जेक्ट। जैसे आप योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ज्ञान माना समझ और योग माना उस समझ को प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, और जब स्वरूप में आ गया तो दिव्य गुणों की धारणा स्वतः होगी, और दिव्य गुणों की धारणा हो गई तो ऐसी आत्मा तन मन धन या मन पाणी कर्म से सेवा के बिना रह नहीं सकता, उससे स्वतः सेवा होती रहेगी। तो मुख्य है ज्ञान, लेकिन वर्तमान माहौल के आधार से इस समय है मुख्य योग। लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वयं को जानती है कि मेरा कितना योग लगता है। बैठते हैं लेकिन कितनी देर हम आत्मा बाबा की याद में समा जाती है, बाबा के साथ साथ विश्व का चक्कर लगाती है, विश्व को शक्तियों का दान देती है। ये हर एक ब्राह्मण आत्मा समझता होगा। तो क्यों नहीं योग लग पाता है? अगर योग लगता तो उसकी निशानी है कि तीनों सब्जेक्ट ज्ञान दिव्य गुण और सेवा तीनों में परफेक्ट होता, कोई कमी नहीं होती। ये निशानी है योग लगने की। लेकिन देखा गया है कि प्रैक्टिकल ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है योग, क्यों नहीं लगता है? इसका कारण है, बाबा कहता बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे, ऊंचा पद मिल जाएगा, सब धारणाएं हो जाएंगी। अब आत्मा समझकर बाप को याद करना, जब से हम आप ब्राह्मण बने हैं तब से यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन आत्मक स्वरूप में क्यों नहीं टिक पाते हैं? इसका कारण है, एक ही रूप से अभ्यास कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। अब इसमें ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान किस प्रकार से कहां कहां हमें आत्मक स्वरूप में बनने में मदद देता है। बाबा ने क्या क्या विधि बताई है जिससे हम आत्मक स्वरूप में टिक सकते हैं? पहली बात, बाबा कहता बच्चे आत्मा समझकर बाप को याद करो। कभी बाबा कहता बच्चे फरिश्ते रूप में मुझ बाप दादा को याद करो। कभी कहता परम धाम में बैठकर शिव बाप की याद में समा जाओ, समान बनकर सेवा करो। कभी बाबा कहता सो दर्शन चक्र शंकरधारी बनो। कभी बाबा कहता, बच्चे सोमान में रहो तो देह भान खत्म होता जाएगा। कभी बाबा कहता, बच्चे आप अपने अनादि आदि रूप को याद करो तो देह भान खत्म होता जाएगा। अब इतने प्रकार से बाबा ने इस देह भान को खत्म करने के लिए बताया है, लेकिन योग में हम बैठते हैं तो एक ही प्रयोग करते हैं कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। लेकिन बिंदु समझना इतना सहज काम नहीं है। स्वरूप में स्थित होना इतना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि 84 जन्म आत्मा देह भान में रही है। सतयुग त्रेता देह भान और द्वापर कलयुग देह अभिमान में रही। कईयों को प्रश्न उठता है कि देवताएं तो आत्म अभिमानी थे, देह भान वहां कहां से आया? लेकिन नहीं, देवताओं को आत्मा का सिर्फ इतना ज्ञान था कि जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तब पता पड़ेगा कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ जाकर दूसरा शरीर लूंगी। जैसे बाबा सर्प का मिसाल देता है, अगर सतयुग में आत्म भान होता, थोड़ा सोचना, क्या सतयुग में महाराजा को ये पता नहीं होगा कि मैं महाराजा हूं, ये महारानी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी प्रजा है, ये अनुभव होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये देह भान नहीं है तो और क्या है? देह भान है, अभिमान नहीं है। इस समय आत्मा इस देह भान को जीत कर गई है, इसलिए सतयुग में आत्मा में उस देह के मालिक बनकर रहने का, इंद्रियों पर कंट्रोल रहने का संस्कार बना हुआ है, वो वहां काम करता है। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा की भिन्न भिन्न पॉइंट को जो बाबा ने बताई है उसको स्मृति में लाओ। लोगों का ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट कम क्यों है? क्योंकि इसका दो कारण मेरे समझ से हो सकता है। एक, जो आपको ज्ञान सुना रहा है, जो भी जिसको यज्ञ की तरफ से निमित्त बनाया जाता है, तो एक ये संकल्प रहता है कि ये क्या सुनाएंगे, इनसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, एक ये रहता है। दूसरी बात ये संकल्प रहता है कि जो ये ज्ञान सुनाएंगे ऐसी कौन सी बात है जो बाबा ने मुरली में नहीं बताई है। तो जब मुरली में सब बता ही दिया है तो किसी के सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, किसी का भी अनुभव, किसी की बातें कहीं न कहीं आपको बहुत मदद देती है। एक उदाहरण के रूप में, मैं बहुत पहले किसी दादियों ने मुझे सुनाया था कि एक बार जानकी दादी के सामने इबिल सोल वाली आत्मा आई थी और दादी ने दृष्टि दिया और उसकी इबिल सोल भाग गई। और दूसरा मैंने प्रैक्टिकल देखा है पांडव भवन में, एक में आई थी इबिल सोल, प्रकाश मणि दादी थी, बैठी उसके सामने, उसके सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा और दृष्टि दिया, इबिल सोल भाग गई। ये सुना देखा हुआ था। तो ऐसे एक बार सेवा के क्षेत्र में हमें भी तांत्रिक का सामना करना पड़ गया था। ज्ञान के बड़ा विपरीत था, लेकिन रिजल्ट ये हुआ, उसने सारी तंत्र की क्रियाएं कर ली, अंत में उसी के ऊपर इफेक्ट आया, वो बेहोश होके गिर गया। तो कईयों की सुनी हुई बातें, अनुभव की बातें शक्ति देती है, मदद देती है। जैसे मधुबन की बात है, ब्रिजकोठी की है, शायद मोहन सिंगल भाई जानते होंगे कि एक बार बाबा सुबह मुरली सुना करके आया था। बाहर चबूतरा था ब्रिजकोठी के बाहर, वहां बाबा खड़ा हुआ था। तो चारों तरफ झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। एक सांप बाबा के पैर पे चढ़ गया। तो बाबा ने जब देखा तो इधर उधर देखा तो बलदेव पाठक शरीर छोड़ दिया, वो भाई दिखाई दिया। बाबा ने उसे बुलाया, इधर आओ। आया और पैर की तरफ इशारा करके बाबा ने कहा, इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ। सांप को बाबा कहता, बच्चे को पकड़ के ले जाओ, इसको दूध पिला के जंगल में छोड़। अब बताओ, जिंदा सांप पकड़ना कोई सहज काम है क्या? अब ये कैसे मुर्दा सांप फेंक दे तो भी उछल जाएंगे। तो थोड़ा सोचने लगा, जाके कपड़ा ले आओ या चिमटा ले आऊं। बाबा के पास उसका संकल्प पहुंचा और बाबा ने अथॉरिटी से बोला, बलदेव कौन कह रहा है? तो जैसे थोड़ी अथॉरिटी से बोला, कौन कह रहा है? ज्ञान तो पहले ही था, बाबा कह रहा है। लेकिन जैसे ये अनुभव में आया कि स्वयं भगवान बोल रहा है, पहले नहीं था ये बात, बाबा कह रहा है। और जब ये आया, भगवान बोल रहा है, बड़े आराम से सांप को पकड़ा, दूध पिला के छोड़ाया। शक्ति आ गई तो ज्ञान को हम ज्ञान के रीति से नहीं सुने, ज्ञान के रीति से सुनेंगे तो ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन ज्ञान को, ज्ञान अस्त्र है, ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान लाइट है, ज्ञान माइट है, ज्ञान भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य है। इस एक एक शब्दों को मनन करके देखो तब ज्ञान के महत्व का पता पड़ेगा। ज्ञान अस्त्र है, हमारी सेफ्टी का ढाल है ज्ञान। माया से, परिस्थितियों से, संस्कारों से बचने का ज्ञान ढाल है, अस्त्र है। ज्ञान शस्त्र है, दुश्मन पर विजय पाने का शस्त्र है। ज्ञान लाइट है, रास्ता दिखाने वाला है। अंधेरे से ज्ञान प्रकाश में लाने वाला है। ज्ञान माइट है, ज्ञान से शक्ति आती है। आप भले अभी तक इतना योग किया या नहीं किया, लेकिन ज्ञान के समझ के आधार पर भी काफी परिवर्तन हो गया। तो ज्ञान माइट भी है, ज्ञान ईश्वर के डायरेक्ट महावाक्य हैं। हम रोज मुरली सुनते हैं लेकिन ये अनुभव में नहीं आ रहा है कि ये ईश्वर के डायरेक्ट महावाक्य। जिस एक एक महावाक्य की इतनी बड़ी महिमा है, मुरली में तो सुनते एक एक वर्सन्स लाखों रुपए के, लेकिन एक एक वर्सन्स का महत्व शास्त्रों में दिया है। ब्राह्मणों के तीन शास्त्र हैं, ब्राह्मणों के तीन शास्त्र हैं, गीता, भागवत, महाभारत, तीनों ब्राह्मणों के। गीता का ज्ञान भगवान दे रहा है, भागवत अर्थात जो गोप गोपियां चाहे साकार रूप में बाबा के साथ, चाहे इस समय अव्यक्त रूप में बाबा के साथ जो संबंधों का सुख ले रहे हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, ये जो आनंद ले रहे हैं इसका यादगार भागवत, और विनाश का यादगार महाभारत। तो महाभारत में दिखाते हैं जब दोनों सेनाएं सामने थी, युद्ध का डंका बज चुका था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहा था नष्टो मोहा होने के लिए। तो जब गीता का ज्ञान देके पूरा हुआ तो इस तरफ पांडव सेना, उस तरफ भीष्म द्रोणाचार्य बड़े बड़े महारथी। तो भीषम पितामह जैसे पश्चाताप करने लगे, हाय मेरी तकदीर, भगवान ने अर्जुन को इतना ऊंचा ज्ञान सतगति का मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दिया। मेरी इतनी खराब तकदीर कि मैं एक शब्द भी नहीं सुन सका। हे हवा, तुमको मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया? अगर एक जोर से झोंका भी आ जाता, एक शब्द भी मेरे कान में पड़ जाता, तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाता। इतने महान हैं बाबा के एक एक शब्द। लेकिन हम ज्ञान को ज्ञान के रीति से सुनते हैं। अब कल से ज्ञान सुनते समय चाहे कोई भाई या बहन सुना रहा है, वो अपने जीवन का अनुभव सुनाएगा। चाहे आप मुरली सुन रहे हो, इस स्मृति में सुनना ज्ञान अस्त्र है, ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान लाइट है, ज्ञान माइट है, और ज्ञान ईश्वर के डायरेक्ट महावाक्य हैं, जिससे हमारी सतगति हो जाती है। तो फिर ज्ञान सुनने का मजा आएगा और आपका योग बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
जाने का लक्ष्य सामने आता।